कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत अगली हेडिंग है गीता में कर्म का सिद्धांत कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता में प्रतिपादित कर्म की व्याख्या को प्रस्तुत किए बिना कर्म के सिद्धांत से संबंधित कोई भी विवेचन अधूरा ही है। श्री अरविंद के शब्दों में, प्रत्यक्ष अनुभव से स्पष्ट दिखाई देता है कि श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान युग में भी उतनी ही पथ प्रदर्शिका एवं स्फूर्तिदात्री है जितनी कि महाभारत के युग में समाविष्ट होते समय थी। गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्शनिक अथवा विद्व चर्चा का विषय नहीं अपितु आचार विचारों के क्षेत्र में भी विद्यमान होकर मार्ग बतलाने वाला है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युद्ध में रथ होने से हिचकिचा रहे थे। उनकी शंका थी कि लड़ाई जैसे कर्म से आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है। इसी से जिन उदार पुरुषों ने परब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा का पूर्ण कल्याण कर लिया है वे इस संसार में कैसे बर्ताव करते हैं। यहीं से गीता के उपदेश का आरंभ हुआ। भगवान कहते हैं कि संसार की चाल ढाल के परखने से दिखाई पड़ता है कि आत्मज्ञानी पुरुषों के जीवन बिताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले आ रहे हैं। पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जहाँ सुख सरीखे पुरुष संसार छोड़कर आनंद से भिक्षा मांगते फिरते हैं वहाँ जनक सरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के पश्चात भी स्वधर्मानुसार लोगों के कल्याणार्थ संसार के सैकड़ों कर्मों में अपना समय लगाया करते हैं। पहले मार्ग को सांख्य या सांख्य निष्ठा कहते हैं और दूसरे को कर्मयोग कहते हैं। यद्यपि दोनों निष्ठाएँ प्रचलित हैं तथापि इसमें कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही वह मरती है। ऐसा भी नहीं है कि यह एक बार होकर फिर होने की नहीं। यह आज नित्य शाश्वत और पुरातन है एवं शरीर का बध हो जाए तो भी यह मारी नहीं जाती। जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है उसी प्रकार देह शरीर का स्वामी आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर दूसरा नया शरीर धारण करती है। अतः जन्म और मृत्यु के विषय में व्यर्थ का शोक न करके मनुष्य को अपना कर्म करते जाना चाहिए। धर्मानुसार कर्म ही श्रेष्ठ है क्योंकि इस कर्मयुग में एक बार आरंभ किए हुए कर्म का नाश नहीं होता और आगे भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अर्थात कर्मयोग मार्ग में यह यदि एक जन्म में सिद्धि न मिले तो क्या किया हुआ कर्म व्यर्थ न जाकर अगले जन्म में उपयोगी सिद्ध होता है और प्रत्येक जन्म में इसकी वृद्धि होती है एवं अंत में कभी न कभी सच्ची सदगति मिलती ही है। अनेक प्रकार के कर्मों से ही जन्म रूप और फल और जन्म जन्मांतर में भोग तथा ऐश्वर्य मिलता है। ऐसा सोचने वाले लोगों का ध्यान भोग और ऐश्वर्य पर ही लगा रहता है और वे कार्य अकार्य का उचित निर्धारण नहीं कर पाते और उन्हें सच्ची सिद्धि नहीं मिल पाती। इसका प्रमुख कारण यह है कि कर्म करने से पहले ही वे फल पाने की आशा लगा लेते हैं। जिस प्रकार उनका ध्यान मन कर्म पर नहीं अपितु फल पर लगा रहता है यह अनुचित है। कर्मण्येधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु ते संगो सत्कर्मणि। अर्थात मनुष्य को तो केवल कर्म करने का ही अधिकार है, फल मिलना या न मिलना कभी भी उनके अधिकार में नहीं। इसलिए न तो मेरे कर्म का अमुक फल मिले या ध्येय में रखकर कभी कर्म न करना चाहिए और न ही कर्म न करने का आग्रह होना चाहिए। लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता के उसी उपदेश में कर्म के सिद्धांत या कर्मयोग का सारा रहस्य थोड़े से शब्दों में उत्तम रीति से बतला दिया गया है। पहले यह कहा गया है कि कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है, परंतु इस समय यह शंका होती है कि कर्म से ही संयुक्त होने के कारण जिसका पेड़ उसी का फल इस न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी है वही फल का भी अधिकारी होगा। अतः इस शंका को दूर करने के लिए दूसरे चरण में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि फल में तेरा अधिकार नहीं। इससे निष्पन्न होने वाला तीसरा सिद्धांत बतलाया गया है कि मन में फलासा रखकर कर्म करने वाला मत बनो, परंतु कर्म और उसका फल एक दूसरे से संबंधित है। इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करने लगा कि फलासा के साथ ही साथ फल को भी छोड़ देना चाहिए तो इसे भी सच न मानने के लिए अंत में स्पष्ट उपदेश दिया गया है कि फलासा को तो छोड़ दे पर इसके साथ ही कर्म न करने अर्थात कर्म को छोड़ने का आग्रह न कर। अतएव इस श्लोक का यह अर्थ है कि फलासा छोड़कर मनुष्य को कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए, किंतु न तो कर्म की आसक्ति में फंसे और न ही कर्म छोड़े। त्यागो न युता इह कर्मश नाशी रागः। इस संबंध में गीता में भगवान का स्पष्ट निर्देश है कि आसक्ति छोड़कर और कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि दोनों को समान ही मानकर योग्य से होकर कर्म करना चाहिए। कर्म की सिद्धि होने या निष्फल होने की दोनों ही अवस्था को समान मानने की मनोवृत्ति को ही कर्मयोग कहते हैं। कर्म एक ही क्यों न हो, पर करने वाले की इच्छा अच्छी या बुरी बुद्धि के अनुसार वह शुभ अथवा अशुभ हुआ करता है। अतः कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को साम्य बुद्धि की शरण लेनी चाहिए। फल की दृष्टि में रखकर काम करने वाले लोग कृपण अर्थात दीन या निचले दर्जे के होते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह पूछा कि यदि तुम्हारा यही मत है कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो हे केशव मुझे युद्ध के घोर कर्म में क्यों लगाते हो, तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि कर्मों का प्रारंभ न करने से ही पुरुष को नैष्कर्म अर्थात कर्म करने से पहले ऐसा उपाय करना जिसे कर्म के बंधन या दोष मिट जाएं कि प्राप्ति नहीं हो जाती, और कर्मों का प्रारंभ त्याग न करने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती, क्योंकि कोई मनुष्य कुछ न कुछ कर्म किए बिना क्षण भर भी रह नहीं सकता। प्रकृति के गुण प्रत्येक परतंत्र मनुष्य को सदा कुछ न कुछ कर्म करने में ही लगाया ही करते हैं। केवल कर्मों का त्याग कर देने से ही मोक्ष नहीं मिल सकता। यदि ऐसा होता तो फिर पत्थरों को भी मुक्ति मिलनी चाहिए। इससे लोकमान्य तिलक के अनुसार तीन बातें सिद्ध होती हैं। अ, नैष्कर्म कुछ कर्म शून्यता नहीं है। ब, कर्मों को बिल्कुल त्याग देने का कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करे परंतु वे छूट नहीं सकते। और स, कर्मों का त्याग देना सिद्धि प्राप्त करने का उपाय नहीं है। इसलिए कर्मों के बंधन को नष्ट करने के लिए आसक्ति छोड़कर काम करना ही उचित है। जो मूड हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन किया करते हैं उन्हें मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहते हैं। अर्थात जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध नहीं है पर केवल दूसरों के भय से या इस अभिलाषा कि दूसरे मुझे भला कहें केवल ब्रह्मेंद्रियों के व्यापार या कर्म को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं बल्कि ढोंगी है। परंतु उस मनुष्य को विशेष योग्यता वाला कहा जाएगा जो मन से इंद्रियों का संयमन करके केवल कर्मेंद्रियों द्वारा अनासक्ति बुद्धि के कर्मयोग प्रारंभ करता है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने वाला की योग या कौशल को ही गीता में कर्मयोग कहा गया है। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण का उपदेश है कि अपने धर्म के अनुसार नियत या नियमित कर्म को तू कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं अधिक अच्छा है। इसके अतिरिक्त यह समझ ले कि यदि तू कर्म नहीं करेगा तो भोजन भी न मिलने से तेरा शरीर निर्वाही न हो सकेगा। जगत के धारणार्थ चलाए हुए कर्म या यज्ञ के चक्र को जो इस जगत में आगे नहीं चलाता उसकी आयु पाप रूप है। इसलिए तू भी फल की आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म सदैव किया कर, क्योंकि फलासक्ति छोड़कर काम करने वाले मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। भगवान ने आगे यह भी कहा कि आत्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थ बुद्धि छूट जाने पर भी लोक कल्याण के कर्म उससे छूट नहीं जाते। हे पार्थ, त्रिभुवन में न तो तेरा कुछ कर्तव्य शेष रहा है और न ही कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गई है, तो भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं स्वयं ही हर प्रकार के आलस्य को त्याग कर कर्मों को न करूँगा तो मनुष्य भी वह सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि प्रत्येक मनुष्य निष्काम बुद्धि से कर्म करता जाए। यह कर्म उसके अपने धर्म के अनुरूप होना चाहिए। स्वधर्म का अर्थ मोक्ष धर्म नहीं अपितु शास्त्र द्वारा निर्धारित चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग वर्णों का कर्तव्य कर्म है। इन कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ना चाहिए। पराय धर्म का आचरण सुखदायक हो तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म अर्थात चातुर्वर्ण निहित कर्म ही अधिक श्रेयस्कर है। चाहे वह स्वधर्म सदोष भले ही हो, स्वधर्म का पालन करने में यदि मृत्यु हो जाए तो भी उसमें कल्याण है, परंतु परम धर्म भयंकर होता है। गीता में यह कहकर यह भी कहा गया है कि मोक्ष और कर्म का कोई विरोध नहीं है। कर्म फल त्याग कर कर्म करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि भगवान को जो व्यक्ति जिस प्रकार से भजता है उसे भगवान उसी प्रकार से फल देते हैं। किसी भी ओर से मनुष्य भगवान के ही मार्ग में आ मिलते हैं। श्री कृष्ण का कथन है कि इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम हो जाता है कि कर्म अकर्म और विकर्म क्या है, इसलिए इनको स्पष्टतः समझ लेना चाहिए। अक्षर पर ब्रह्मा से पंच महाभूतादि तक विविध पदार्थों की उत्पत्ति करने वाली जो क्रिया अर्थात सृष्टि व्यापार है वही कर्म है। अतः स्पष्ट है कि गीता में कर्म का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। वास्तव में मनुष्य जो कुछ करता है वह सब भगवत गीता के अनुसार कर्म ही है, चाहे वो कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक ही क्यों न हो। संन्यास मार्ग वालों का कथन है कि कर्म का स्वरूप त्याग ही कर्म है और कर्म को छोड़ने से अर्थात अकर्म से ही मोक्ष मिलता है। परंतु गीता के अनुसार अकर्म कर्म त्याग नहीं, निष्काम कर्म को ही अकर्म कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि कर्म शून्यता की स्थिति किसी के लिए भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि प्रकृति का यह नियम ही है कि वह प्रत्येक मनुष्य को सदा कुछ न कुछ कर्म करने में लगाए रहती है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। अतः जो देहधारी है उसको कर्मों का निशेष त्याग होना संभव नहीं है। मनुष्य की बात तो दूर रही, स्वयं भगवान को भी सदा कर्म करते रहने में जुटा रहना पड़ता है। यदि सृष्टि ही कर्म है तो मनुष्य जब तक सृष्टि में है तब तक कर्म उससे छूट नहीं सकता। लोकमान्य तिलक के अनुसार कर्म करने पर भी जो कर्म हमें बद्ध नहीं करता उसके विषय में कहना चाहिए कि उसका कर्मत्व अर्थात बंधकत्व नष्ट हो गया। और यदि किसी भी कर्म का बंधकत्व अर्थात कर्मत्व इस प्रकार नष्ट हो जाए तो फिर वह कर्म अकर्म ही हुआ। कर्म के फल का बंधन न लगने के लिए गीता शास्त्र का यही सच्चा साधन है कि निसंगत बुद्धि से अर्थात फलासा छोड़कर निष्काम बुद्धि से कर्म किया जाए। इस साधन का उपयोग करके जो कर्म किया जाए वही गीता के अनुसार प्रशस्त सात्विक कर्म है और गीता के मत में वही सच्चा अकर्म है, क्योंकि उसका कर्मत्व अर्थात कर्म विपाक की क्रिया के अनुसार बंधकत्व निकल जाता है। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनमें से उक्त प्रकार के अर्थात सात्विक कर्म घटा देने से बाकी जो कर्म रह जाते हैं उसके दो भाग हो सकते हैं, एक राजस और दूसरा तामस। इनमें तामस कर्म मोह और अज्ञान से हुआ करते हैं, इसलिए उन्हें विकर्म कहते हैं। फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाए तो वह विकर्म ही है, अकर्म नहीं। यदि कोई चाहे तो राजस कर्मों को केवल कर्म भी कह सकता है। इन तीनों प्रकार के कर्मों सात्विक, राजस व तामस के गुणागुण के संबंध में गीता में जो कुछ उल्लेख किया गया है उस विषय में हम आगे अगले अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। श्री कृष्ण का उपदेश है कि यज्ञ, ध्यान, तप और कर्म का त्याग न करना चाहिए, इन कर्मों को करते रहना चाहिए। यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानों के लिए भी पवित्र अर्थात चित्त शुद्धि कारक है। अतएव इन यज्ञ, दान और तप कर्मों को भी बिना आसक्ति रखे फलों का त्याग करके करते रहना चाहिए। अर्थात स्वधर्म के अनुसार जैसे दूसरे निष्काम कर्म किए जाते हैं वैसे ही यज्ञ, दान आदि कर्मों को भी फलासा और आसक्ति त्याग कर करना चाहिए। जो कर्म स्वधर्म के अनुसार स्थिर कर दिए गए हैं उनका त्याग करना किसी को भी उचित नहीं है। का मोह से त्याग किया त्याग तामस कहलाता है। शरीर को कष्ट होने के डर से अर्थात दुखकारक होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दे तो वह त्याग राजस हो जाता है तथा त्याग का फल उसे नहीं मिलता। स्वधर्मानुसार नियत कर्म जब कार्य अथवा कर्तव्य समझकर और आसक्ति एवं कर्म के फल को छोड़कर किया जाता है तब वह सात्विक त्याग समझा जाता है। कोई भी कर्म पांच कारणों या हेतुओं का फल होता है और वे हैं अधिष्ठान, स्थान, कर्ता, भिन्न भिन्न कारण अथवा साधन। कर्ता की अनेक प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं अर्थात व्यापार और उनके साथ ही साथ पांचवा कारण दैव है। शरीर से, वाणी से अथवा मन से मनुष्य जो जो कर्म करता है फिर चाहे वह न्याय हो या अन्याय उसके उक्त पांच कारण होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई कर्म शून्य नहीं हुआ करता, उसका कोई न कोई आधार व स्थान होना ही चाहिए। साथ ही साथ उस कर्म को करने के लिए कर्ता किसी कर्ता की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान के लिए ज्ञाता और कर्म के लिए कर्ता की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं। फिर भी गीता के उपरोक्त श्लोक में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि कर्म का फल होने के लिए मनुष्य ही अकेला कारण नहीं है। लोकमान्य तिलक के अनुसार इसका अर्थ यह है कि मनुष्य इस जगत में हो या न हो प्रकृति के स्वभावानुसार जगत का अखंडित व्यापार यह कर्म चलता ही रहता है और जिस कर्म को मनुष्य अपने कर्तव्य समझता है वह केवल उसी के यत्न का फल नहीं है परंतु उसके यत्न और संसार की अन्य चेष्टाओं की सहायता का परिणाम है। उदाहरणार्थ केवल खेती केवल मनुष्य के यत्न पर ही निर्भर नहीं करता। उसकी सफलता के लिए आवश्यक धरती, बीज, पानी, खाद और बल आदि के गुण धर्म चेष्टाओं की सहायता आवश्यक होती है। इसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने के लिए जगत की जिन विविध चेष्टाओं की सहायता आवश्यक है, उनमें से कुछ चेष्टाओं को जानकर तथा उनके अनुकूलन करके ही मनुष्य यत्न किया करता है। परंतु हमारे प्रयत्नों के लिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल सृष्टि के और भी कई कारक होते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। इसी को दैव भाग्य कहते हैं और कर्म की घटना का यह पांचवा कारण कहा गया है। मनुष्य का यत्न सफल होने के लिए यह सब इतनी सब बातों को आवश्यकता है तथा जब उनमें से कई या तो हमारे बस की नहीं या उनके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं, तब यह बात अस्पष्ट या सिद्ध होती है कि मनुष्य ऐसा अभिमान केवल उसकी मूर्खता है कि मैं अमुक काम करूंगा अथवा फल की ऐसी आशा रखना भी मूर्खता का लक्षण है कि मेरे कर्म का फल अमुक ही होना चाहिए। भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर गीता के अनुसार कर्मों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, सात्विक, राजस और तामस। फल प्राप्ति की इच्छा न रखने वाला वह मनुष्य जो कि मन में न तो प्रेम और न द्वेष रखकर बिना आसक्ति के धर्मानुसार निर्धारित कर्म करता है कि उस कर्म को सात्विक कहते हैं, परंतु काम अथवा फल की आशा की इच्छा रखने वाला अथवा अहंकार बुद्धि का पुरुष बड़े परिश्रम से जो कर्म करता है उसे राजस कहते हैं। तामस कर्म वह है जो कि मोह से बिना इन बातों को विचार किए आरंभ किया जाता है कि आगे क्या होगा, अपना सामर्थ्य कितना है और उस कर्म से किसी के प्रति हिंसा करनी होगी या नहीं। गीता में विभिन्न पर्णों के कर्तव्य कर्मों का भी निरूपण किया गया है। ब्राह्मण का स्वभाव जन्मतः सम, दम, तप, पवित्रता, शांति, सरलता, आध्यात्म ज्ञान, विविध ज्ञान और आत्मिक बुद्धि है। सूरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और प्रजा का शासन करना क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। कृषि, पशुओं को पालना और व्यापार वाणिज्य करना वैश्यों का सौभाजन्य कर्म है और इसी प्रकार सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। प्रत्येक वर्णों को इसी व्यवस्था के अनुसार कर्म करना चाहिए और यदि निष्काम बुद्धि से इन कर्मों को वह करेगा उसे मुक्ति मिल जाएगी। मनुष्य के आचरण से ही उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सिद्धि पाने के लिए और कोई दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। अगली हेडिंग है कर्म के सिद्धांत का महत्व। वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में कर्म के सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। यह व्यक्ति के लिए परम संतोष का संदेश लाता है और उसे असत्य के पीछे दौड़कर व्यर्थ ही अपनी शक्ति को नष्ट करने का निषेध करता है। बाहरी तौर पर यह प्रायः यह देखा जाता है कि समाज में अच्छे लोग दुख भोगते हैं जबकि नाना प्रकार के भ्रष्टाचार में रत व्यक्ति ऐस आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के मन में नैतिकता अकर्तव्य कर्मों के विरुद्ध विद्रोह का होना स्वाभाविक है और वह यह सोच कर कि दुष्कर्म करके ही लोग जब सुख ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं तो वह भी क्यों न वैसा ही करे, नैतिक कर्तव्यों को छोड़कर अनैतिक पथ का पथिक हो सकता है। ऐसी दशा में कर्म का सिद्धांत उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि इसके अनुसार अपने कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य को एक न एक जन्म लेकर हमेशा तैयार रहना पड़ता है। अर्थात यदि वह बुरा कर्म करता है तो उसका बुरा फल कभी न कभी अवश्य ही मिलेगा। कर्म अनादि है और इसके अखंड व्यापार में परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते। गीता में कहा गया है कि गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति कठिन है। इतना ही नहीं अपितु कर्म का बंधन भी बड़ा कठिन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता। वायु कर्म से ही चलती है, सूर्य चंद्र आदि कर्म से ही घुमा करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सगुण देवता भी कर्मों में बंधे हुए हैं। यह विश्वास व्यक्ति के व्यवहारों पर एक प्रभावशाली नियंत्रक के रूप में कार्य करता है और उनके दुराचरणों पर रोक लगाता है और साथ ही उसे संतोष भी प्रदान करता है। वास्तव में कर्म का सिद्धांत व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व पर अत्यधिक बल देता है और उसे इस बात का निर्देश देता है कि नैतिक कर्तव्य का पालन ही उसके जीवन का धर्म है और उस स्वधर्म को उचित ढंग से निभाने में ही उसका तथा समाज का वास्तविक कल्याण निहित है। यह सिद्धांत अकर्मण्यता अथवा आलस्य की भावना को त्याग कर अपने सत्कर्मों द्वारा अपने भविष्य भाग्य को बदलने या उसमें सुधार करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। इसके अनुसार हमारे चरित्र में जो बुराई हो उसे हमें अभी से त्याग देना चाहिए, उसके सत्कर्मों द्वारा जीत लेना चाहिए, नहीं तो हमारे दुर्गुण अनेक जन्मों तक बने रहेंगे और हमें उसका बुरा फल भोगना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने युग दर्शन में कहा है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात दुर्गुणों को मिटाने के लिए उसके विपरीत गुणों का मनन और अनुशीलन करना चाहिए। यह कर्मवाद का भी निर्देश या उपदेश है, अर्थात दुष्कर्मों के बुरे फल के प्रभाव से अपनी रक्षा करने के लिए अपनों को सत्कर्मों में लगाना, यह वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन के लिए परम कल्याणकारी। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को परहित के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। परहित के कार्य पुण्य कर्म है, इसलिए यह कर्तव्य कर्म भी है। पुण्य के संचय से परलौकिक जीवन समुन्नत होता है, क्योंकि परहित के कार्य करने वाले के लिए इन कर्मों के फल का ही संचय होता जाता है। कर्म का सिद्धांत सामाजिक जीवन में सुव्यवस्था व संगठन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता है। कर्म फल पर विश्वास के कारण ही समाज के सब कार्य, शिक्षा से लेकर सफाई तक, गृहस्थी के कार्य से लेकर सहकारी कार्य तक सुचारू रूप से चलते रहते हैं। प्रत्येक जाति या समूह के सदस्यों में यह दृढ़ विश्वास होता है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उन्हें इस जन्म में विशिष्ट प्रकार का कार्य करने को मिला है और इस कारण उसको करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए गंदे से गंदे कार्य को भी या हीन से हीन निर्योग्यता वाले कार्य को भी बिना किसी संकोच या शिकायत के स्वीकार कर लिया जाता है। परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी कर्म की धारणा के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे जन्म से अधिक अच्छे कुल स्थिति व सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा में इस जन्म में समाज द्वारा मान्य समस्त सत्कर्मों व कर्तव्यों को करने का प्रयत्न करता है। यह सामाजिक संगठन व सुव्यवस्था के लिए वरदान बन जाता है। अगली हेडिंग है निष्कर्ष। कुछ विदेशी विद्वानों ने कर्म के सिद्धांत को संदेह की दृष्टि से देखा है और अनेक विषयों में भारतवर्ष के पिछड़ेपण का कारण यहाँ के लोगों का इस सिद्धांत पर आधारित अंधविश्वास माना है। श्री मैकडानेल के अनुसार पुनर्जन्म और कर्म का संयुक्त सिद्धांत व्यक्ति को अपनी वर्तमान अवस्था से संतुष्ट रहना सिखाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के प्रयत्नों में शक्ति की कमी हो जाती है, अर्थात संपूर्ण उत्साह और क्षमता से व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में यह धारणा बनी होती है कि मनुष्य को अपने समस्त पूर्व कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं और वर्तमान जीवन में उसकी सफलता या विफलता उन पूर्व कर्मों से ही निर्धारित होती है। साथ ही कर्म का सिद्धांत निष्काम कर्म करके व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का लोभ दिखाता है। इससे व्यक्ति के लिए पारलौकिक जीवन का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है और उसका ऐतिहासिक ऐहिक जीवन गौण स्थान प्राप्त करता है। यह स्थिति सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक प्रयत्नों के क्षेत्र को संकुचित कर देती है और व्यक्ति अपने को निरंतर भाग्य या दैव की लीला देखने के लिए प्रस्तुत करता है। इसलिए कीथ ने कर्म के सिद्धांत को आवश्यक रूप से भाग्यवादी कहा है। श्री जॉन मैकेंजी का कथन है कि कर्म की अवधारणा मानवीय आचरण की भाग्यवादी व्याख्या प्रस्तुत करती है और समाज के सदस्यों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो आपसी असमानता देखने को मिलती है उसे दूर करने के संबंध में कुछ भी नहीं कहते। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत वैयक्तिक व सामूहिक जीवन के प्रति किए गए सामाजिक अन्याय को उचित ठहराता है। साथ ही इस सिद्धांत में मनुष्य के लिए इतनी भी छूट नहीं है कि यदि उसने गलती से कुछ अन्याय कर्म या पाप किए हैं तो उसे क्षमा कर दिया जाए। एक बार का अपराधी सदा के लिए अपराधी, यह नियम कर्म के सिद्धांत का है जो कि आधुनिक सुधारात्मक नीति व दृष्टिकोण के विपरीत है तथा वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। कर्म के सिद्धांत के संबंध में एक और आपत्ति यह है कि यह जाति या वर्णगत भेद को उचित ठहराता है। इस सिद्धांत में भाग्य का तत्व अधिक प्रबल होने के कारण विभिन्न वर्णों विशेषकर निम्न वर्गों में एक प्रकार की कायरता उत्पन्न हो गई और अपनी व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में उनकी रुचि समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत का प्रयोग निम्न वर्णों की आर्थिक हीनता एवं सामाजिक अन्याय व निम्न स्थिति को उचित ठहराने के लिए किया गया। परंतु वास्तव में कर्म के सिद्धांत के संबंध में उपरोक्त आलोचनाएं अनुचित तथा निराधार हैं। ये आलोचनाएं कर्म के सिद्धांत के संबंध में अधूरे एवं एकपक्षीय अध्ययन व ज्ञान पर आधारित है। यह बात गीता के प्रस्तुत कर्मयोग के गहन अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाती है। गीता का केंद्रीय विचार यह है कि अपने कर्तव्य या कर्म स्वधर्म का पालन करो और कभी भी अकर्मण्य न बनो। गीता क्रियात्मक जीवन का पक्ष लेती है तथा अकर्मण्यता की निंदा करती है। गीता में यह आदर्श प्रस्तुत किया गया है कि स्वयं भगवान भी कर्म से अपना भिक्षा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के लिए कर्म ही प्रकृति का नियम है। यह भाग्यवादी आदर्श कदापि नहीं हो सकता, बल्कि यह तो समाज के लिए परम कल्याणकारी है। गीता का निर्देश है कि सिद्धि की प्राप्ति के पश्चात भी जो मनुष्य फल की आशा त्याग कर शुद्ध चित्त से अपना कर्तव्य कर्म करता जाता है, वही वास्तव में सन्यासी है। यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागिष्य विभीयते, अर्थात जिसने कर्म न छोड़कर केवल कर्म फलों का त्याग किया हो वही सच्चा त्यागी है। साथ ही कर्म फलों को त्याग देने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अगला पिछला या सरासर विचार किए बिना मनुष्य को चाहे जो कर्म मनमाने ढंग से करने की छूट है। इस संबंध में गीता में स्पष्ट निर्देश है कि अनुबंधक अर्थात आगे क्या होगा और फल का विचार किए बिना जो कर्म किया जाता है वह तामस या निष्कृष्ट है। साथ ही गीता में यह भी उल्लेख है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव या प्रकृति सिद्धि गुणों के अनुसार पृथक पृथक बटे हुए हैं। इस विभाजन में ऊंच नीच या उत्तम अध्यतम का कोई भी भाव नहीं है। यह सामाजिक अन्याय नहीं, प्रकृति के अनिवार्य नियम का पालन है। अतः कर्म का सिद्धांत न तो व्यक्ति को कर्म या प्रयत्न करने को कहता है, न मनमाने ढंग से काम करने की छूट देता है और न ही जीवन को निराशाओं और अन्याय में डुबो देता है। ऐसा तो वे लोग कर सकते हैं जो कि इस सिद्धांत की वास्तविकताओं को नहीं समझते। अंत में यह कहा जा सकता है कि धर्म का सिद्धांत भाग्यवादी नहीं है, वो वास्तव में सुधारवादी है। इस सिद्धांत में यह बार बार कहा गया है कि जो व्यक्ति यह इस सत्य को मानकर कर्म या आचरण करता है कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसी के आचरण को सदाचरण या मोक्षानुकूल आचरण कहते हैं। ऐसे आचरण या कर्म से दुराचारी मनुष्य का अंतःकरण भी सदाचरण की ही तरफदारी किया करता है, जिससे उसे अपने किए हुए दुष्कर्मों का पश्चाताप होता है और उसके चित्त की शुद्धि तथा चरित्र का सुधार होता है। यह भाग्यवादी दृष्टिकोण नहीं, बल्कि स्वयं को जानने पहचाने का आह्वान है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि यह विश्वास गलत है कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक है। वास्तव में नास्तिक वह है जिसे स्वयं अपने पर भरोसा नहीं है। इसी उपदेश का समर्थन अन्य रूप में भी मिलता है। बौद्ध धर्मी लोग आत्मा का या परब्रह्मा का अस्तित्व नहीं मानते, यद्यपि उनको ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान मान्य नहीं है, तथापि उन्हें कर्म का सिद्धांत मान्य है और उनके धर्म ग्रंथों में यही उपदेश दिया गया है कि अत्तना चुदयतानम, अर्थात अपने आप को स्वयं को ही प्रयत्न से राह पर लाना चाहिए। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी न होकर वास्तव में एक सुधारवादी कर्म है। इस प्रकार आपका यह चैप्टर कर्म का सिद्धांत यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।